मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। पहले मैं जो कुछ मुख्य खबरें हैं उनकी चर्चा करूंगा और बाद में यदि वक्त मिल सका तो फिर मैं मुख्य विषय के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कुछ समय से आपने महसूस किया होगा, कुछ समय से क्या मतलब कुछ सालों से आप कह लीजिए, महसूस किया होगा और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लगातार काफी कुछ आने लगे हैं। कुछ तो डिसीजंस आते हैं, कुछ उसके ऑब्जर्वेशंस आते हैं, कुछ आप यूं कह लीजिए कि टिप्पणियां आती हैं, कुछ नसीहत के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है। और याद रखिए कि ये जो बातें हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस रूप में महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां करती है उन पर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, नॉट एट ऑल। हो सकता है पूछ भी लिए जाएं एक आपके मौलिक विचारों को जानने के लिए, लेकिन ज्यादातर संभावना होती है कि टिप्पणियों पर सामान्यतया नहीं पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन हाँ उनके जो डिसीजंस होते हैं उन पर पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से कहा कि आप जो चुनाव आयुक्त होते हैं हमारे उनकी नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाइए, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फिर ये टिप्पणी और ये जो नसीहतें होती हैं ये हमारे किस काम की हैं? अगर मैं हमारे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने की दृष्टि से आप समझिएगा। दो रूप में ये हमारे लिए काम के होते हैं। पहला यह कि जो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कहता है तो इनका उपयोग हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, राइट? तो एक प्रामाणिक बात हो जाती है। दूसरा ये कि आप देखेंगे मेंस की दृष्टि से कि कभी कभी प्रश्नों के साथ ये जोड़ दिया जाता है कि आप अपने विचार बताइए, आप अपने तर्क दीजिए, इसे सिद्ध कीजिए, औचित्य बताइए, इस तरह की बातें कहता है वो। इसका आधार क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आप अपने विचार बताना चाह रहे हैं तो आपके विचारों का आधार क्या हो सकता है? डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन आपके विचारों का आधार होना चाहिए, व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हो, लेकिन खासकर एक एकेडमिक आंसर के रूप में हमारा जो विचार होना चाहिए वो संवैधानिक दायरे का ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी बातें कहता है टिप्पणी के रूप में, नसीहतों के रूप में, तो सीधी सी बात है कि वो संविधान के दायरे में ही होते हैं या कानून के दायरे में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अगर हमारे दिमाग में रहेंगी तो वो हमारे विचारों के लिए आधार का काम करती हैं कि नहीं, हमें अपने विचारों के लिए इस लाइन को लेकर चलना है। तो इस लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो विचार होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो टिप्पणियां होती हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, होते ही हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कुछ बातें कही हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं संक्षिप्त में ही आपके सामने रखूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज के अखबारों में वो दिया हुआ है, खासकर प्रेस को लेकर के उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। हालांकि आप शुरू से इसके बारे में पढ़ते रहे, जानते भी हैं, नई बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी बात कही है। एक मलयाली न्यूज चैनल है, वो है मीडिया वन, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर। इसके बाद ये जो चैनल है ये सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लेकर के चले गए, खासकर मीडिया के स्वतंत्रता को लेकर के, मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं तो इससे बाधित होता ही है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि बिना तथ्यों के हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले को उठाना नहीं चाहिए, और इसके लिए बाकायदे उन्होंने गृह मंत्रालय की आलोचना की कि अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रख रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो आपके पास उसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए, और अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, यानी कि टिप्पणियां की हैं। अब आप देखिए कि वो टिप्पणियां क्या हैं। मैं जो अखबार में मुझे पढ़ने को मिला है, मैं ज्यों के त्यों वो शब्द आपके पास सामने रख रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है तो उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन से बचना जरूरी होता है और बचना भी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती। इस तरह के कहने का मतलब है कि बस राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे दिया और सबूत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचनात्मक विचारों को, यानी कि सरकार की अगर कोई आलोचना करता है किसी बात को लेकर के, आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निडर प्रेस बहुत जरूरी है। प्रेस की ड्यूटी है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और लोगों के सामने उन ठोस तथ्यों को पेश करें जिनकी मदद से वे लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने वाले विकल्प चुन सकें। प्रेस की आजादी पर पाबंदी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। सामाजिक, आर्थिक से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक जैसे विचार लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पेसिफिकली मीडिया के स्वतंत्रता के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। इसी के साथ ही जो कुछ राजनीतिक दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि याचिका के तहत कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सरकार उन केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो उन्होंने एक मांग की थी और उनकी मांग ये थी कि ये जो हमारी एजेंसियां हैं और जो कि नेताओं के खिलाफ इनका गलत इस्तेमाल होता है, तो नेताओं की जो गिरफ्तारी होती है, उनको जो रिमांड पर भेजा जाता है और उनको जो जमानत दी जाती है, उनके लिए नई गाइडलाइन जारी की जाए। ये उन्होंने कहा, नई गाइडलाइन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे भी ध्यान में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेता इस देश के नागरिकों के समान ही हैं, तो उनके लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। राजनेता और नागरिक, सामान्य नागरिक, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि भाई, अगर आपको लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप प्रमाण बताइए, और अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो हवा में ही मत उछालिए कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कही, कि आपके पास इसके ठोस सबूत होने चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और भी मामला है जो आज के अखबार में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो ये है, एक स्थान के नाम में परिवर्तन करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कह दिया कि किसी स्थान के नाम में परिवर्तन करना ये चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई, इतिहास इतिहास होता है और इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इसीलिए नाम वगैरह के में बदलाव करने से बचना चाहिए। तो बचना चाहिए, उसकी एक टिप्पणी थी, उसका एक ऑब्जर्वेशन था, आप यूं कह लीजिए कि एक सीख थी, दिशा बोध था, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार को माने, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं था। तो ऐसा ना हो कि आप यहां कुछ विरोधाभास देखने लगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी नाम में परिवर्तन करना केंद्र सरकार का अपना अधिकार है या राज्य सरकारों का अपना अधिकार है, क्योंकि वो चुनी हुई सरकारें हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके साथ ही साथ कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने एक और भी बात कही थी, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बात कही थी, और वो ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार बंद लिफाफे में कोई अपनी बात रखती थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइट उसे रिजेक्ट किया, खासकर वन रैंक वन पेंशन के मामले में। बोले कि आप बंद लिफाफे में क्यों अपनी बात कहना चाहते हैं, आप ओपनली अपनी बात कहिए। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। दोस्तों, अब जो दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपने कल के अखबारों में पढ़ा होगा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नदियों के, गांवों के, दर्रों के नाम में परिवर्तन किए हैं, और मजेदार बात यह कि अपने हिसाब से उनके नाम रखे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, यह तीसरी बार हुआ है। 2017 में भी इसने ऐसे ही किया था, 2021 में भी उसने ऐसा ही किया था। और ये गांव, दर्रे और नदी कहां के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। पता नहीं उसको ये क्यों गलतफहमी है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, इसीलिए जब वो भारत का नक्शा बनाता है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को नहीं दिखाता है। तो सीधी सी बात है कि भारत ने इसका विरोध किया और बहुत ही जबरदस्त रूप से विरोध किया, और चीन के साथ जो हमारे तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है उसे देखते हुए हम बहुत उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि वो कोई हमारी बात मान लेगा, सुन लेगा, लेकिन हमारे हिस्से को वो अपने नाम दे, ये तो एक हास्यास्पद सी चीज है। और सच पूछिए तो चीन की जो राजनीति है वो चूंकि कम्युनिस्ट आधारित राजनीति है और वहाँ एक तानाशाही व्यवस्था काम कर रही होती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो जनता की राय का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, तो वो अपने ढंग से काम करते रहते हैं और भारत सरकार अपने ढंग से उन चीज़ों का विरोध करती रहती है, उन चुनौतियों का सामना करती रहती है। लेकिन तथ्यों के रूप में, आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक तनाव को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाली ही घटना है। दोस्तों, एक अखबार में मुझे पढ़ने को मिला 15 मिनट शहर। 15 मिनट शहर, ये 15 मिनट शहर क्या है, बहुत थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं। खासकर फ्रांस की पहली महिला मेयर थी एनी हिडेल्गो, उन्होंने ये परियोजना शुरू की थी। 15 मिनट शहर, नाम से बहुत स्पष्ट है, यानी कि आप शहर में रह रहे हैं और आपको अपनी जरूरत की कोई भी चीज 15 मिनट की दूरी पर मिल जाएगी। मतलब ऐसे नहीं कि आप उसके लिए एक एक घंटे का सफर तय कर रहे हैं। तो शहर का विकास इस तरीके से किया जाए कि नागरिकों की जो खासकर ज्यादातर जरूरतें होती हैं वो 15 मिनट की दूरी पर पूरी हो जाए। आप देखेंगे कि हमारे यहां भी अब बहुत सी कॉलोनियां ऐसी बनने लगी हैं बड़े बड़े शहरों में, कि कॉलोनी के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजें, कि किराने की दुकान है, दवाई की दुकान है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, दूध वगैरह है, ये सारी चीजें आपको वहीं मिल जाती हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाने लगी। खासकर जो 15 मिनट शहर है ये बड़े नगरों के लिए ही है, अदरवाइज हमारे देश के तो जो ज्यादातर शहर हैं वो 15 मिनट की दूरी पर ही होते हैं, कि आप 15 मिनट की दूरी वाला सफर तय करके आप बकायदे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है 15 मिनट शहर, मुझे लगता है कि इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होंगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ का एक गांव है शिकारी टोला, उसके दीपक धनखड़ ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो दीपक धनखड़ जी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, कल गजेटेड हॉलीडे है, अब सोमवार को आप लोगों से मुलाकात हो सकेगी और फिर हम लोग करेंट अफेयर्स पर और बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।